मनुष्य जन्म लेकर हम सबको ही पता है, जब से हमने होश संभाला है तब से हम बेचैनी भोग रहे हैं। और शायद यदि दूर की भी सोच लें तो ऐसा कोई वर्ष हमको याद नहीं आता या नहीं मिलेगा। जो वर्ष मेरा चैन से बीतेगा, माँ की बेचैनी से मैं परेशान नहीं हूँ। इसी बेचैनी को ही वास्तव में पाप कहा जाता है। कि पाप क्या होता है? पाप का परिणाम, पाप का जो फल है वो क्लेश होता है, मानसिक क्लेश होता है, मानसिक बेचैनी होती है, या दुख कह देते हैं उसको। तो इसीलिए अर्जुन कृष्ण कहता है कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर भी वो पाप करता है, कर जाता है। कौन उसको मजबूर करता है? भगवान कृष्ण सरल सा उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य की इच्छा जो है वही उसको पाप करने के लिए मजबूर करती है। तो हम कामना कहते हैं, वासना कहते हैं। जब वो वासना मनुष्य को पाप करने के लिए मजबूर करती है, जिसका परिणाम मानसिक क्लेश है, जिसका परिणाम दुख है, इसका मतलब मनुष्य की सफलता क्या है? इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं, इस मानसिक क्लेश से मैं मुक्त हो जाऊं, ये मेरे मनुष्य जन्म की सफलता है। तो ये वाणी उसी का विज्ञान समझा रही है, बड़ा स्पष्ट सरल तरीके से, जो वास्तव में मेरी बीमारी है। कहते हैं, स्वार्थ त्याग उपकार पछानी, पर की सेव निष्काम लखानी। स्वार्थ हम सभी जानते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने समाज के लिए, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वो उसको स्वार्थ करते हैं। इच्छा पूरी करने के लिए, आवश्यकता पूरी करने के लिए जो कुछ भी कर्म करते हैं उसको आध्यात्मिक भाषा में स्वार्थ कहा जाता है। स्व अर्थ अर्थात अपने लिए जीना। तो इसकी जगह क्या करें, वो स्वार्थ त्याग उपकार पछाड़ी, परोपकार करो, दूसरे के लिए जी। होगा क्या, कैसे? पर की सेव निष्काम लखन, और वो सेवा भी कैसी? निष्काम। उसके एवज में आपको कुछ चाहिए नहीं, केवल सेवा करना ही आपका फर्ज है, सेवा करना ही कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि लक्ष्य क्या है? निस्वार्थ होना, निष्काम होना, ये लक्ष्य है मानव जन्म। इसीलिए प्रभु खुद इस वाणी में कह रहे हैं कि स्वार्थ त्याग उपकार पछानी, उपकार की पहचान करो, पर की सेव निष्काम लखानी। ध्यान रखो कि सेवा करके कोई मन में मेरे कामना तो नहीं पैदा हो रही है कि इसके बदले में ये मिलना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि निष्कामता का तो आपको अनुभव होता है, काम लखानी। तो आपके मन में धीरे धीरे जो कामना पलती थी, कामना मल्टीप्लाई होती थी, उसकी जगह मन के अंदर धीरे धीरे निष्कामता आपकी बढ़ती है, और निष्कामता के अनुपात में ही आपके मन के अंदर शांति बढ़ती रहती है, चंचलता घटती रहती है। आगे कह रहे हैं कि अनंत जतन से साधन की जो मानुष्य जन्म सफल कर दीजिए। कितने प्रकार के यत्न हम करते हैं स्वार्थ कर्म के लिए, इसी प्रकार हमको अनेक प्रकार से कोशिश करनी होती है कि किस प्रकार में मेरा जन्म जो है या मेरा जीवन जो है वो परोपकार में जीते, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी दृष्टि बाहर है। क्योंकि मैंने जब परोपकार कर्म करता हूँ, परोपकार में सोचता हूँ, तो जो मन बुद्धि इंद्रिया मेरी स्वार्थ में लगी रहती थी वो फिर परमात्म में एंगेज होने लगती, परोपकार में एंगेज होने लगती। महाराज जी का जीवन आप यदि फिजिकली देखें तो 100% उनका जो संसारी कर्म था वो परोपकारी कर्म था, सारा का सारा। और जिन्होंने महाराज जी का संग किया, उनकी संगत का संग किया, तो उन्होंने ही परोपकार सीख लिया। इसीलिए जिस जगह भी परोपकारी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आप देखिए वहां ईमानदारी भी होगी स्वाभाविक रूप में, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव भी होगा, एक दूसरे का कष्ट भी नजर आता होगा। आलोचना की जगह यदि आलोचना किसी के मन को कष्ट पहुंचाती है ना, तो आपकी वृत्ति ही खत्म हो जाती है दूसरे की आलोचना करने। ठीक है, प्रभु ने जैसा दिया है, जैसा स्वभाव लेके आया है, व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसके अंदर उसके उपकार की बात आती है। क्या इसको विचार मिले, कौन सा इसको लिटरेचर दिया जाए, इसको पढ़कर, इसको सुनकर इसके अंदर सत विचार बुद्धि में पैदा हो, और ये जो स्वार्थ वाली भावना है, ये धीरे धीरे इसकी कम होती चली जाए। तो संगत का फायदा क्या हुआ? यही तो होता है। जो संगत ईश्वर मार्ग पर ईमानदारी से चलने वाली है, उस संगत पर जाकर आपको वैसे ही लोग को मिलेंगे। आप समाज में देख लीजिए, सारा स्वार्थ बाजार है, स्वार्थ का जीवन। यहाँ आके पता चलता है कि संगत का जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि संगत से आपको परोपकारी जीवन की प्रेरणा मिलती है। दूसरे का कष्ट आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन समाज में दूसरे के सुख दिखाई पड़ते हैं, फिर आप जलते हो, इसके पास है, मेरे पास है। तो स्वार्थ के जीवन में बिल्कुल उल्टा है। आप वहां से मानसिक क्लेश लेके आते हो, अपनी वासना बढ़ाकर लौटते हो, और जब सत्संग में जाते हो, सत्संग के बीच में होते हो, तो उल्टा हो जाता है। परमार्थ भावना आपने आपके अंदर बढ़ती है, सरलता आपके अंदर आती है, स्वभाव में चालाकी आपकी नष्ट होती है, और निष्काम सेवा करने की भावना आपके अंदर धीरे धीरे क्षण होने लगती है। तो कहते हैं कि अनंत जतन से साधन कीजो, मानुष जन्म सफल कर दीजो। मैं क्या अब देखता हूँ बच्चों के बारे में, अपने बारे में, मेरे जीवन की सफलता किस चीज में, सब जानते हैं बच्चों के लिए क्या ख्वाब देते हैं। और जो ईश्वर है, जो ये वाणी प्रकट कर रहा है, वो दूसरी बात कह रहा है। वो कह रहे हैं कि जो स्वार्थ त्याग जब उपकार करोगे और आपके मन में निष्कामता आएगी, तब करे मानुष जन्म सफल कर लीजो, तब तेरा मानव जन्म सफल होगा। तेरा मानुष जन्म विफल क्यों है? कि तेरे सारा जन्म बीत गया मानसिक बेचैनी से, तुझको कभी एक दिन भी मुक्ति ही, एक दिन के लिए भी मैं अपनी मानसिक बेचैनी, मन मेरा ही है, अपनी मानसिक बेचैनी से मैं मुक्त नहीं। लेकिन जिसने उपकारी जीवन धारण किया, दूसरे का कष्ट उसको दिखाई पड़ता है, उसका निवारण करने की कोशिश करता है, और वो भी निष्कामता के साथ, एवजों की कामना नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको प्रेम रूप, आनंद रूप, ज्ञान रूप ईश्वर चाहिए। उसके मन में एक डिजायर पलती है, अलग डिजायर, कि मुझको ईश्वर चाहिए। अब बताइए, कामना को पूरी करना और कामना को जनरेट करना अपने अंदर दूसरों को देख देख, ये पतन का रास्ता है। और जैसे जैसे तेरी आयु बढ़ती है, तेरा मन सरल होता जाए, तेरी बुद्धि के निर्णय जो है सत्मार्ग की ओर छूटने लगे हैं, सत्मार्ग के निर्णय आने लगे इसके अंदर, तो क्या बुद्धि निर्णय करेगी? तो इस शरीर से या जो भी मेरे पास सामग्री है, उससे किसी का दुख निवारण कर सको, तो मैं प्रभु का काम करने वाला बन जाऊंगा, मैं प्रभु के नजदीक पहुंच जाऊंगा। तो ये दूसरी भावना उसके अंदर पलती है, इसीलिए वास्तव में जो सत्संगत है वहां यही भाव आपको मिलेगा। और जिसका परोपकारी जीवन है, जिसके मन के अंदर निष्कामता है, उसके अंदर यही भाव आपको मिलेगा। उसके पास बैठोगे, उसके नजदीक जाओगे, उसका संग करोगे, आप खुद देख लीजिए, यही भाव आपकी मन बुद्धि के अंदर डेवलप करेगा, इसी का विकास होगा। कामना और स्वार्थ जो है, ये आपका कमजोर होता है। आप अपने खुद अनुभव से जानते हो कि अब जाके मेरी मानसिक बेचैनी से काफी छुटकारा मुझको मिल चुका। तो ये है मानव जन्म की सफलता, इसका वाणी संदेश है। आगे कह रहे हैं कि निष्काम कर्म इस विध चित धारो, प्रभु भावी हृदय विचारो। ये बड़े राज की बात है, यही हम धोखा खा जाते हैं। वाणी का जो एक्सप्लेनेशन होता है या वाणी का जो संदेश होता है, वो बड़ा ही एक्यूरेट और बड़ा ठीक मार्गदर्शन करने वाला होता है, लेकिन हम उस पर आकर चिंतन नहीं कर पाते, इसलिए साधारण रूप में अर्थ निकालते। क्या कह रही है कि निष्काम कर्म इस विध चित धारो, प्रभ भावी हृदय विचारो। निष्काम कर्म करने का भी एक मेथड है, करे इस प्रकार धारण करो, इस प्रकार प्रभु भावी हृदय विचार। प्रभु ने ऐसा प्रारब्ध मेरी देह को दिया था या मुझको दिया था, ये मौका जब मिला आज मुझे सेवा करने का, निष्काम कर्म करने का, ये प्रभु ने मेरे लिए क्रिएट किया है। इस काम को प्रभु मुझसे करवाना चाह रहे हैं मेरे विकास के लिए, क्योंकि मैं प्रभु को चाहता हूं। तो आपको जब निष्काम कर्म करने का मौका मिलता है, मान लीजिए सम्मेलन भी हुआ, उस यज्ञ में सब पार्टिसिपेशन करते हैं और निष्काम सेवा करने की कोशिश करते हैं, उसका परिणाम भी आप जानते हैं, कैसा प्रेम का वातावरण होता है, कैसा एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर भाव बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सबके बीच में प्रभु खुद विराजमान। तो ये जो आपको निष्काम कर्म करने का या सेवा करने का मौका मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल गया आपको, ये आपको प्रारब्ध दिया गया। भावी का मतलब होता है प्रारब्ध। तो ये प्रभु आपके हाथ से काम करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि तेरे पुण्य कर्मों का फल उदय हुआ। अब तूने यहां भी यदि ये सोच लिया कि मैं करने वाला हूं, फिर मारा गया। क्यों? क्योंकि तेरा अहंकार बढ़ेगा। जब तू कर्ता बनेगा तो तेरा अहंकार बढ़ेगा भी। तो एक विकार मैंने कम किया कामना का, एक विकार बढ़ा लिया अहंकार। तो इसीलिए लाभ क्या खड़ा हुआ है कि उसको जब यह मौका मिला है तो पूरी धरती पे यहाँ कर्ता केवल ईश्वर है। सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही जान ले गया। तूने अकर्ता होने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया था, प्रभु ने तुझको मनुष्य जन्म अकर्ता होने के लिए दिया था, तू कर्ता बन। तेरी क्या ताकत है पूरी सृष्टि में? जिस जो शक्ति पूरी सृष्टि को चला रही है, चांद तारे सूर्य चंद्रमा धरती पवन हर चीज, वो प्रकृति चला रही है, वो प्रभु चला रहे हैं, तो तेरी क्या सामर्थ्य है? तेरा क्या योगदान है? तो तेरा भाग्य है ये, तेरे शुभ कर्मों का फल उदय हुआ है कि तू ये परोपकारी कर्म आज कर रहा है। लेकिन संसारी रीति में भी लोग परोपकार करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में उनके अंदर एक कामना फलती है कि इसका सुखरूप फल मुझे आगे मिलेगा। बस यही बीमारी है, सुखरूप फल इसका मुझको परोपकार का मिलेगा आगे चलकर, यही मेरी बीमारी है। मनुष्य जन्म मिला था निष्काम होने के लिए, मैं परोपकार करके भी काम ना पा रहा हूं कि मुझे इसके बदले में मिलेगा। हालांकि वाणी तो कह रही है बात, संपत धन जो सेवा में दे चार गुना प्रगट कर ले, बात लिखी है वाणी के, जो कुछ भी तुम दोगे उसका चार गुना प्रकृति आप तुमको वापस कर देगी। लेकिन मैंने यदि ये कामना पाल ली, मैं कर रहा हूं इसका चार गुना मुझे मिलेगा, तो आपकी कामना बढ़ेगी, भोगलास बढ़ेगा या कब होगा? तो कर्म करके भी, ठीक कर्म करके भी उसका जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो निगेटिव मिल रहा है, तो कौन आपको सिखाएगा? सारा समाज ये कहेगा तू अच्छा काम कर रहा है, भगवान तुझे सुख देंगे, भगवान तुझे खुश रखेंगे, तब यही आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब हम सत्पुरुषों की बात गहराई से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वहां पर एक दूसरी बात है। वो क्या कह रहे हैं कि सब भावी हृदय विचार का मतलब निष्काम कर्म करने की भावना पर ध्यान, उसको ठीक प्रकार से करना निष्काम भाव से, लेकिन उसको भी प्रभु भावी के अंतर्गत या प्रभु के हुक्म के अंतर्गत, प्रभु की आज्ञा के अंतर्गत देखना कि ये कर्म ये हाथों से, इन हाथों से हो ही नहीं सकता था जब तक कि इस देह का प्रारंभ प्रभु ने नहीं दिया। तो ये प्रभु ही इस देह से करवा रहे हैं, मेरा भाग्य ये है। मेरा भाग्य कहाँ हुआ? भाग्य मेरा ये है कि इन हाथों से ये अच्छा काम प्रभु मुझसे करवा रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है कि मेरे हाथों से निष्काम सेवा बन पा रही है। इसीलिए ये लीला इस देह से प्रभु की हो रही है। यहां यदि मेरा ध्यान गया तो प्रभु से मेरा प्रेम बढ़ जाता है और मन में निष्कामता आ जाती है, उसका कर्ता बनता ही। जब वाणी खुद ही कह रही है, प्रभु खुद ही कह रहे हैं कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, मानो की बात नहीं कर रहे हैं, जानो क्योंकि यही सत्य है, ये रियलिटी है पूरी सृष्टि। तो तू इस प्रकृति से अलग पैदा नहीं हुआ है, इस प्रकृति के अंतर्गत तेरी देह आती है, तेरी देह के अंदर वो ईश्वर खुद स्थित है, जिसका तू चाहे तो अनुभव कर सकता है, जिसका गुरु ने अनुभव किया मैं भी अनुभव कर सकता हूँ। तो फिर ये वो एवर प्रेजेंट है, अंतर्यामी है वो, उसके बिना तो मेरा मेरी चेतना ही खत्म हो जाएगी। इस पूरी सृष्टि में कॉन्शियसनेस कहीं है, चेतना कहीं है, वो तो केवल प्रभु में है। प्रभु चेतन रूप है, उनकी चेतना का एक स्पार्क मेरी बुद्धि में है बस। लेकिन वो अग्नि यदि मुझसे अलग हो जाए तो चिंगारी का चिंगारी तो बुझ जाएगी, तुरंत ही बुझ जाएगी। इसीलिए जब वो प्रभु इस देह का संग छोड़ते हैं, देह तुरंत हो जाती है, कहां पर तो प्रभु के आधार पर मेरा जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन प्रभु के साथ ही है, प्रभु के बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। इसीलिए जब मैं कामना खत्म करने के लिए, कामना को कम करने के लिए, कामना को सिंप्लीफाई करने के लिए मनुष्य जन्म होश में रहते हुए व्यतीत करता हूँ, तब मेरी प्रगति होती है उन्नति। ये जो स्वार्थ का जीवन है जिसमें मैं उन्नति देखता हूँ, ये वो पॉइजन है जो कई जन्म मैं भोगूंगा, एक जन्म नहीं कई जन्म मैं उस पॉइजन को भोगूंगा कामना के रूप में। कामना कितना तंग करती है एक बालक के जीवन को देखिए, आप घर में ही सीख ले, उसके अंदर कामना पलती है, बुद्धि उसकी होती नहीं है, खुद परेशान रहता है, घर वालों को भी परेशान, यही सोसाइटी में होता है। इतने पापी लोग हैं, खुद परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान। इसीलिए जो भी निष्कामता के मार्ग पर चलता है, इस सोसाइटी को चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपकी सबसे ज्यादा इस सोसाइटी को जरूरत होती है। याद रखिए, कोई भी युग आ जाए जो निष्कामता के मार्ग पर चलता है, इस सोसाइटी को, इस समाज को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो इस सोसाइटी में हीरा आदमी कहलाता है, ये है अलबेला हीरा, जिसके पास बैठकर शांति ही मिलती है, बेचैनी मिलती ही नहीं। तो जो इस निष्कामता के मार्ग पर चलता है वो अंतर्यामी प्रभु उससे कितना प्रसन्न रहता होगा, उसके जीवन को कैसे वो सुधारता होगा, कैसे आगे बढ़ाता होगा, कि कल्पना आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकली सत्पुरुषों के जीवन को देख के ये कल्पना आपके अंदर आ जाती है, जिन्होंने संसार में कुछ भी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी, केवल अंतर्यामी प्रभु से भेंट करने की ही कोशिश करी, बाहर केवल काम चलाया, समाज उसको 100 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी भूल नहीं पाता। राम को हम भूल गए क्या, कृष्ण को हम भूल गए क्या, गीता को हम भूल गए क्या, मोहम्मद को क्या हम भूल गए? 1000 वर्ष तक दुनिया उनको याद रखना चाहती है। और जो भोगवादी लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, इधर मरे उधर छुट्टी, कौन समाज में याद करता है? इसीलिए सब कुछ दात साहब की देखो, आज्ञा मान परम सुख को देखो, निष्काम जो सेवा है या निष्काम कर्म है उसका राज यहाँ खड़ा हुआ है। निष्काम कर्म करने के पश्चात भी, परोपकारी कर्म करने के पश्चात भी तेरे अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने कर। यदि प्रभु ने वो प्रारब्ध तेरी देह को नहीं दिया होता, क्योंकि देह को मैं अपना स्वरूप समझता हूँ इसलिए कहा जाता है कि मुझको दिया, क्योंकि सत्य है वो प्रारब्ध देह का है। चाहे तू देह को याद रखे, चाहे तू उसको देह को भूला रहे, लेकिन वो कर्म देह से होंगे, क्योंकि वो कर्म का जो कंट्रोल है वो प्रभु के हाथ में है। तो भावी कहते हैं, इसको प्राप्त कहते हैं, तो कोई चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए जब मैं प्रभु भावी के अंतर्गत इस निष्काम सेवा को, परोपकारी कर्म को देखता हूँ, तब मेरा संबंध सीधा ईश्वर से बनता है। हर कर्म के बाद भी आपको ईश्वर की ही याद आएगी, ईश्वर से नजदीकी, ईश्वर से प्रति प्रेम बढ़ेगा, और संसार की वासना, संसार के प्रति जो आपका लगन थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ेगी। आगे कहते हैं कि सब कुछ दात साहब की देखो, आज्ञा मान परम सुख देखो। सब कुछ दात साहब की देखो, आज्ञा मान परम सुख पे। तो ये परम सुख कौन सा मिलेगा? ये परम सुख उसी को कहते हैं जिसको आत्मदर्शन कहते हैं, जिसको आत्म अनुभव कहते हैं। तो अंदर जब प्रभु की नजदीकी जब मिलती है, उसका अनुभव हमको होने लगता है, वहां जाके पता लगता है कि जब प्रभु का अनुभव अंदर होता है, उसमें जब मन लगता है, तब संसार के सारे क्लेश वहां से हट, उस पीरियड में संसार के सारे क्लेशों से मेरी कुछ देर के लिए मुक्ति, वो परम सुख है। आप खुद देख लीजिए, एक बच्चे का मन चंचल ज्यादा होता है ना, हमारे मुकाबले में एक बालक का मन ज्यादा चंचल होता है, क्योंकि बुद्धि का कंट्रोल है। मैं बड़ा हो गया हूँ, उसी मेरा निर्णय करती है, अच्छा बुरा समझती है, सही गलत समझती है, तो सोच समझ कर मैं मन को परमिशन देता हूँ, भाई चलो इंद्रियों के द्वारा ये सुख उठा लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। तो परम सुख क्या है? परम दुख का स्रोत ईश्वर। संसार में परम सुख नहीं होता, संसार में सुख दुख होता है। सुख किसी भी वस्तु से मिल जाएगा, वही वस्तु आपके मानसिक क्लेश का कारण सुख में बन जाएगा, जिसकी नींद बार बार आपको फील होगी, नहीं मिली आप परेशान। संसार का सुख प्राप्त करके मेरे अंदर वासना गहरी हो जाती है, डिजायर मल्टीप्लाई हो जाती है, इसीलिए वो थोड़ा सुख मेरे भविष्य में बड़े दुख का कारण बनता है। और ये प्रभु का प्रेम, जैसे जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा ये, वैसे वैसे आपका मन शांत रहेगा, बुद्धि शांत रहेगी, प्रभु के साथ एक होने की कोशिश करेगी। इसीलिए वो रास्ता परम सुख का अंदर जाता है, संसार में ऊपर नहीं जाता। क्या बेस कहाँ है? सब कुछ दात साहब की देन, जो कुछ भी बाहर ये अवेलेबल है, ये प्रभु की देन है मेरे। चाहे समाज मिला, चाहे देश मिला, चाहे शरीर मिला, चाहे शरीर के साथ जो परिवार मिला, जो कुछ भी देह का संबंध जहां तक है, वो सब प्रभु की दात है, प्रभु की देन है, या यूं कह लिए कि मेरे प्रारब्ध का। पूर्व में जैसे जैसे मैंने कर्म किए, वैसे वैसे मेरा जन्म का प्रारब्ध तैयार किया प्रभु ने, और ये सब कुछ जो है प्रभु की दात है, प्रभु की देन है, मैंने नहीं बनाया कुछ। अरे माता पिता जिसके साथ मेरे शरीर का जन्म हुआ, तो मैंने बनाया क्या अपना शरीर? मैं तो उसका निर्माता नहीं हूं, मिला है ना मुझे, माता पिता के रूप में मिला, परिवार के रूप में मिला, घर के रूप में मिला, समाज के रूप में मिला, देश के रूप में मिला, प्रकृति वातावरण के रूप में मिला, सब मुझे मिला है ना। तो कह रहे कि सब कुछ दात साहब की दे, लोग कारण करता नहीं है संसार के, प्रभु इस संसार के कारण करता है। वो कारण करता कहते हैं कि जैसा मैंने बोया है पिछले जन्मों में, उसी के अनुसार उन्होंने ये वातावरण मेरे लिए तैयार करके रेडीमेड दिया। तो इससे मुक्त होने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए वो अंदर यामी है, अंदर बैठा हुआ है, अंदर उसको हर समय प्राप्त है। लेकिन मेरे मन में संसार की वासना पल रही है और बुद्धि उसको उसको उसका निर्णय दे रही है कि हाँ ये इच्छा पूरी कर लोगे तो सुखी हो जाओगे, ये जन्म सफल हो जाएगा। मैं लग जाता हूँ वासना बुद्धि के चक्कर, जो मेरा विकार है उसको मैं गुण करके देखता हूँ, उसको प्राप्ति करके देखता हूँ। इसीलिए अंत में वो कह रहे हैं कि दृढ़ निश्चय जब एह विद पाई, निष्काम बुद्धि मार्ग लखाई। तो बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो जो हो जाता है कि मैंने हर दिन हर वर्ष निष्काम होना सीखना है, कामना को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, कामना को इतनी कम कर लूं कि जरूरत मेरी पूरी हो जाए, बाकी मेरे कोई इच्छा बाकी ना हो। ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब अंदर का रास्ता आप गुरु के मार्गदर्शन अनुसार लगातार साथ में तय कर रहे हैं, खाली कर्म नहीं, ईश्वर की ओर बढ़ने की जो क्रिया है जिसको हम सिमरन कहते हैं, ईश्वर की याद करना कहते हैं, ध्यान कहते हैं, तो अंदर की क्रिया आपकी ईश्वर में लगातार ईश्वर से मिलने के लिए चलती रहती है सिमरन के रूप में। तो कहते हैं कि निष्काम बुद्धि मार्ग लगाए, बुद्धि में जैसे जैसे तेरी निष्कामता आती है और केवल जरूरत व्यस्त तेरा जीवन रह जाता है, तो कहते हैं कि वो क्या करती है, मार्ग लखाई, वो बुद्धि अंदर ईश्वर के मार्ग को अनुभव करती है, उस मार्ग में निरंतर अग्रसर होती रहती है। वो मार्ग बाहर नहीं है, अंदर ही मार्ग है, नाभि से लेके कपाल तक का यही मार्ग है। तो इस मार्ग पे लगातार बुद्धि आगे बढ़ती रहती है और उसके अनुभव बढ़ते रहते हैं। लखाई का मतलब होता है कि अनुभव करना, तो बुद्धि उस ईश्वर के आनंद को इस देह के अंदर ही अनुभव करती है। और ईश्वर नाशवान नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है, वो तो सदैव है तेरे साथ, मौत के वक्त भी ईश्वर का संग नहीं छूटता, जीव का और ईश्वर के बीच का संबंध बना रहता है। तो मैं देह जो मेरी जला दी जाती है, नष्ट हो जाती है, मुझे पता है छूट जाती है, तो वो प्रभु जो परमानेंट मेरे साथ है, जो आनंद रूप है, जीवन रूप है, उसको मैंने छोड़ रखा है अज्ञानता के कारण। इसलिए वाणी और सब कुछ का संदेश एक ही कह रहा है कि मनुष्य जन्म का विकास ये है कि तूने हर दिन हर महीने हर वर्ष तेरा डेवलपमेंट का जो स्केल है नापने का वो ये है कि तेरे अंदर कामना कितनी कमजोर पड़ी संसार की वस्तुओं की। मैं लोगों को देख देख के कामना बढ़ा रहा हूँ या सत्पुरुषों को देख देख के या संगत जहां मैंने संग किया है वहां के लोगों के अंदर जो गुण है अर्थात जो लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं निष्कामता के मार्ग पर उनको देख देख के मैंने अपने अंदर निष्कामता बढ़ाई है या कामना बढ़ाई है संसार के स्वार्थी लोगों को देख के नकल करके। तो ये मेरा मापदंड होना चाहिए प्रगति का और अवनति का। यदि मेरी कामना बढ़ी है तो याद रखिए तू पतन की ओर गया है, तेरा कोई उत्थान नहीं। चाहे तू PhD होल्डर है चाहे तू प्रोफेसर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरा पतन हुआ है। यदि पतन नहीं होता तो बड़े बड़े इंजीनियर बड़े बड़े डॉक्टर ये आजकल भ्रष्ट समाज के मुखिया बने हुए। समाज में इतना ओपन भ्रष्टाचार इनके अंदर दिखाई पड़ता है तो हम लोगों के बीच में आपको जो लोग जानते नहीं दिखाई पड़ता। तो जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं इतने समझदार हैं ये कैसे नीचे की तो नीचे को चल पड़े समाज को सुख देने के बजाय ये दुख देने लगे। जिनकी बुद्धि तीव्र है समझदार है हम कहते हैं समझदार लोग हैं तो ये कामना का खेल इच्छा का खेल है ये वासना का खेल। तो यदि मैंने ईश्वर की तरफ नहीं पढ़ा मैं उसके सिमरन के लिए उसके ध्यान के लिए मैंने यदि वक्त नहीं निकाला सारा ध्यान मेरा संसार की और परिवार की ओर ही लगा रहा तो याद रखिए मैंने मूर्ख होकर जन्म व्यतीत किया है पाप कमाकर संसार से मैं विदा होऊंगा अगला जन्म इससे भी मेरा बुरा होगा दुखदायी होगा। इसलिए अलर्ट हो जाए निष्काम बनने की कोशिश करें इसका रास्ता परोपकार है। मुझे दूसरे का दुख दिखाई पड़ना चाहिए और उसको मैं कैसे अपनी सामर्थ्य के अनुकूल उसका दुख कम कर सकता हूँ यहाँ मेरी दृष्टि होनी चाहिए करके मेरा संबंध बनना चाहिए ना कि इससे मुझे क्या मिलेगा इस प्रकार का संबंध बनना चाहिए। इसलिए मनुष्य निष्काम होने के लिए मिला है कामना को कम करने के लिए मिला है इसलिए परोपकार का रास्ता है मतलब रूपी स्मरण का रास्ता है इसको करके अपना मानव जीवन